नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से लुका रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको नमस्कार। परमेश्वर की असीम दया से मैं भला चंगा हूँ और आप सबके लिए भी यही आशा रखता हूँ। परमेश्वर ने हमें फिर से यह सु अवसर दिया है कि हम उसके जीवित वचनों में से सीखें। पिछले अध्ययन में हमने यीशु के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को देखा। हमने देखा कि यीशु ने याइर की बेटी को जीवित किया और लहू बहने से पीड़ित स्त्री को भी चंगा किया, और इतना ही नहीं, उसने दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को भी ठीक किया। मेरे मित्र, आज हम लुका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। इसका शीर्षक है, प्रभु यीशु महान आज्ञा देता है और 12 को भेजता है। प्रभु यीशु 5,000 लोगों को खिलाता है और अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करता है। रूपांतरण और एकलौते पुत्र से प्रभु यीशु दुष्ट आत्मा को निकालता है और प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर बढ़ते हैं। तो आइए अब हम प्रभु यीशु की महान आज्ञा को देखते हैं, 12 को भेजा जाना। लुका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। प्रिय मित्र, जब हमारा प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर था तो उसने चंगाई का वरदान अपने प्रेरितों को दिया। यह चिन्ह वरदानों में से एक था। यह प्रेरितों की एक पहचान थी, यह दिखाने के लिए कि वे ही प्रेरित हैं जिनका वे दावा करते हैं। जब कलीसिया बुरी दौर में थी तो नया नियम के लिखे जाने से पहले प्रेरित होने की यही पहचान थी कि उसके पास चिन्ह या वरदान हो। पत्रस रोगी को चंगा कर सका और मुर्दा को भी जिला सका। पौलुस भी रोगी को चंगा कर सका और मुर्दे को जिला सका। ऐसा करना उनके लिए एक प्रमाण था कि वे प्रभु यीशु के सच्चे प्रेरित थे। प्रभु यीशु ने शिष्यों को परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को चंगा करने के लिए भेजा। यह प्रभु यीशु के क्रूस पर मरने से पहले हुआ। चंगाई आज महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप पत्रियों को सावधानी के साथ पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यद्यपि पौलुस को चंगाई का वरदान था, स्पष्ट है कि उसने सेवकाई के अंत में इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। पहला तिमोथियों की पत्री 5 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है कि उसने तिमोथियस को पेट की बीमारी के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस लेने को कहा, परंतु उसने उसको चंगा नहीं किया। दूसरा क्रंथियों की पत्री 12 अध्याय उसके 7 के अनुसार स्वयं पौलुस के शरीर में कांटा था, यद्यपि उसने परमेश्वर से इसे हटाने के लिए कहा, परमेश्वर ने नहीं हटाया। दूसरा तिमोथियों की पत्री 4 अध्याय के 20 में उसने तिमोथियस को यह भी लिखा, त्रुफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। पौलुस ने अपने दोस्त त्रुफिमुस को चंगा क्यों नहीं किया? आप ध्यान दीजिए, पौलुस अपने सेवकाई के अंतिम समय में पहुंच गया था और यहाँ तक कि उसी समय में चिन्ह या वरदान कलीसिया से विलुप्त होना शुरू हो रहा था। स्पष्ट है कि जब पवित्र शास्त्र कलीसिया का अंग बन गया और चंगाई का वरदान दृश्य से गायब हो गया, व्यक्ति का अधिकार धर्मशास्त्र के पन्ने परमेश्वर के वचन में चला गया। अपने जीवन के अंतिम समय में यूहन्ना ने चेतावनी दी कि सही सिद्धांत ही मनुष्य अर्थात प्रेरित की पहचान है। दूसरा यूहन्ना की पत्री के 10 में हम पढ़ते हैं, यदि कोई हमारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो। गलातियों की पत्री 1 अध्याय के 8 में पौलुस ने कहा, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। यहाँ श्रापित शब्द का यूनानी शब्द अनाथेमा है और इसका अर्थ है नरक में पड़ी आत्मा। यह बहुत कठोर भाषा है जो परमेश्वर के वचन में संपूर्ण अधिकार रखता है। हम लुका 9 अध्याय के 2 और 3 पद को पढ़ते हैं, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा, और उसने उनसे कहा, मार के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपए और ना 2-2 कुर्ते। कुछ लोग आज इस अनुच्छेद का इस्तेमाल अपनी सेवकाई का आधार बनाने के लिए करते हैं। ऐसे प्रचारकों से सावधान रहें और देखें कि वह चंदा संग्रह करता है या नहीं, और देखें कि जब वह यात्रा में निकलता है तो अपने साथ बैग, भोजन और पैसा ले जाता है या नहीं। हमारे प्रभु यीशु ने ये निर्देश अपने 12 शिष्यों को दिए थे, हम लोगों को नहीं। लुका 9 अध्याय के 4 पद में हम पढ़ते हैं, और जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो जाओ। मेरे प्रिय मित्रों, आज मजदूर अपनी मजदूरी पाने के योग्य है। मैं महसूस करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन का प्रचार करता है तो उसे आर्थिक मदद देना चाहिए। प्रभु यीशु के दिनों में परिस्थिति भिन्न थी। शिष्यों को लोगों के घरों में रहना पड़ता था क्योंकि वहां अतिथि भवन या ताज होटल नहीं था, उनकी आवभगत घरों में की जाती थी। हम लूका 9:5-6 पद में पढ़ते हैं, जो कोई तुम्हें ग्रहण न करेगा उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो, और सो वो निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। उनकी सेवकाई का प्रभाव हेरोदेस पर भी पड़ा। हम लूका 9:7-9 पद में पढ़ते हैं, और देश की चौथाई का राजा हेरोदेस यह सुनकर घबरा गया, क्योंकि कितनों ने कहा कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है, और कितनों ने यह कि एलिय्याह दिखाई दिया है, और औरों ने यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। परंतु हेरोदेस ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवाया, अब यह कौन है जिसके विषय में मैं ऐसी बातें सुनता हूँ? और उसने उसे देखने की इच्छा की। हेरोदेस राजा था जो यूहन्ना को जेल में डालने और उसे मारने का जिम्मेदार था। मरकुस हमें बताता है कि हेरोदेस भयभीत था क्योंकि वह सोचता था कि प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो मृत्यु में से जी उठा है, जिसे उसने मार डाला था। हेरोदेस की उत्सुकता ने उसमें प्रभु यीशु को देखने की इच्छा जगाई। हम लूका 9:10-11 पद में पढ़ते हैं, फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नाम एक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगा होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। यह 5,000 लोगों को खिलाने की पृष्ठभूमि तैयार करता है। वो उन्हें विश्राम करने के लिए अलग ले जाता है, परंतु ऐसा करने के लिए उन्हें कोई अवसर नहीं मिला। निश्चित रूप से भीड़ अविवेकी थी, फिर भी हमारे प्रभु यीशु ने उनको बड़ी उदारता से ग्रहण किया, उन्हें सिखाया और जो बीमार थे उनको चंगा भी किया। प्रिय मित्र, आइए अब हम प्रभु यीशु के 5,000 लोगों को खिलाए जाने के बारे में देखें। शिष्य अपने आप को अप्रिय पद यीशु मसीह के सलाहकार के रूप में रखते हैं, उसे बता रहे हैं कि क्या उसे करना है। दुर्भाग्यवश आज हम लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा करने के दोषी हैं। मेरे मित्र, प्रभु यीशु को हमारी सलाह की जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्रभु हैं। हम लूका 9:12-13 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जब दिन ढलने लगा तो बारहों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा करके चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। और वे लोग तो 5,000 पुरुष के लगभग थे। अब वे आर्थिक सलाहकार और वित्तीय उस्ताद बन गए हैं। हम आगे लूका 9:14-15 पद में पढ़ते हैं, तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांती पांती बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु के कहने के बातों को उन्होंने माना। अंत में वे अपने सही जगह में हैं, प्रभु यीशु की आज्ञा मान रहे हैं। लूका 9:16-17 पद में हम पढ़ते हैं, तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। सो जब खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरी भरकर उठाई। मत्ती, मरकुस और यूहन्ना भी 5,000 लोगों के भोजन खिलाने के वृत्तांत को बताते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि हमारे प्रभु यीशु अपने शिष्यों को एक असंभव काम सौंपते हैं। कारण स्पष्ट है, उसका काम करने का इरादा। सृष्टिकर्ता जिसने आदि में मछलियों को बनाया और मैदान में फसल को बहुतात से बढ़ाया, अब वह भीड़ के लिए अपने वचन की आज्ञा से ही भोजन की सृष्टि करता है। हो सकता है कि भीड़ में से बहुतों के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने भरपेट भोजन किया। टुकड़े जो बच गए थे, वह टुकड़ा जो आज हम कूड़ेदान में अर्थात टोकरी में डाल देते हैं, वे वैसे नहीं थे, बल्कि वे रोटी के टुकड़े थे जो बांटे नहीं गए थे। परमेश्वर हमेशा जरूरत से ज्यादा देता है। मेरे प्रिय मित्र, आइए अब हम प्रभु यीशु की अपनी मृत्यु और मृत्यु में से जी उठने की घोषणा के बारे में देखें। लूका 9:18-21 पद में हम पढ़ते हैं, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे तो उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, यहूना बपतिस्मा देने वाला और कोई कोई एलियाह और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी से न कहना। यहाँ महत्वपूर्ण सवाल है, यीशु कौन है? यीशु अपने संबंध में जानना चाहते थे कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। मैं निश्चित हूँ कि लोगों से उनका पूछने का मतलब था कि वे लोग स्पष्ट रूप से जाने कि वास्तव में यीशु कौन है। उसके व्यक्तित्व के संबंध में लोग असमंजस में थे। ध्यान दें कि उसके प्रति लोगों का विचार बहुत ऊंचा था, फिर भी वह कौन था और कौन है इसे समझने में वे चूक रहे थे। सबसे अच्छी बात पतरस ने अगर कभी कही है तो वह थी मत्ती 16 अध्याय के 16 पद के अनुसार कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हम लूका 9 अध्याय उसके 22 पद में पढ़ते हैं, और उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह तीसरे दिन जी उठे। फिर से यीशु उन्हें अपनी आने वाली मृत्यु के विषय में तैयार करता है, लेकिन ध्यान दें कि वह अपनी मृत्यु में से जी उठने के संबंध में बोले बिना कभी अपनी मृत्यु के बारे में जिक्र नहीं करते हैं। हम लूका 9 अध्याय के 23 से 26 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। मेरे प्रिय मित्र, यहाँ पर वह उद्धार के शर्त को नहीं रखता है, बल्कि उद्धार पाए हुओं की स्थिति को बताता है। इसी के बारे में वह कह रहा है, जो मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी उससे लजाएगा। आप आज किस तरह के मसीही हैं? क्या आप उनके समान हैं जो उनको मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं और उनकी महिमा करने के लिए प्रयास करते हैं? मेरे प्रिय मित्र, इन दिनों में हम जिस स्थिति में रहते हैं यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आइए अब हम रूपांतर पर चर्चा करें। रूपांतरण के संबंध में लिखने में डॉक्टर लूका कुछ शामिल करता है जिसे सुसमाचार के दूसरे लेखक छोड़ देते हैं। हम लूका 9 अध्याय उसके 27 पद में पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं जब तक परमेश्वर का राज्य न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। शिमोन पतरस हमें इस पद का अर्थ बताता है। उसने कहा कि उसने परमेश्वर के राज्य को देखा, लेकिन उसने इसे कहां देखा? पहाड़ पर पतरस प्रभु यीशु के साथ था और वह इसका प्रत्यक्ष साक्षी था, अर्थात गवाह था। वह हमें इसके बारे में दूसरा पतरस की पत्री 1 अध्याय उसके 16 से 18 पद में बताता है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई। जब उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, और जब हम उसके साथ पवित्र पर्वत पर थे तो स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। मित्रों, यही व्याख्या शिमोन पत्रस हमें देता है और यह मेरे लिए पर्याप्त है। मैं सोचता हूं कि इसके बारे में आधुनिक विद्वानों से ज्यादा जो वहां नहीं थे उस व्यक्ति को जानना चाहिए जो वहां था। हम लूका 9 के 28 पद में पढ़ते हैं, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। प्रभु यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर ले गया। जब वह प्रार्थना कर रहा था तब उसका चेहरा का रूप बदल गया, उसके चेहरे का रूपांतरण हो गया। रूपांतरण शब्द यूनानी में मेटामोरफोम, अंग्रेजी में मेटामोरफिसिस है। जो घटना घटी वह रेशम के कीड़ा के अनुभव की तरह है। पहले आप रेशम के कीड़े को देखते हैं, तब वह अपने आप को कुआं में बंद कर लेता है और उसके बाद एक सुंदर तितली बाहर आती है। रूपांतरण प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को नहीं दिखाता है, बल्कि प्रभु यीशु की मानवता को दिखाता है। रूपांतरण मानवता का लक्ष्य है। जब आप पहाड़ पर रूपांतरित प्रभु को देखते हैं तो आप ठीक वही देख रहे हैं जो होने जा रहा है। जब हम बदल दिए जाएंगे, मुर्दे जिलाए जाएंगे और जो जीवित हैं बदल दिए जाएंगे, अर्थात वे मेटामोर्फेसिस से गुजरेंगे, उसके बाद वे सब बदल जाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में लाए जाएंगे। हम लुका 9 उसके 29 पद में पढ़ते हैं, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। मेरे प्रिय मित्र, इस पद का अर्थ यह नहीं है कि ज्योति उस पर केंद्रित करके उसे चमकाया गया, बल्कि यह है कि ज्योति उसके शरीर के अंदर से बाहर निकली और उसके अंदर से बाहर की ओर दिखाई दी। कुछ लोग मूर्खतापूर्ण सवाल पूछते हैं, क्या हम स्वर्ग में कपड़े पहनेंगे? मैं सोचता हूँ कि हम लोग पहनेंगे, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता हूँ। हमें इसकी जरूरत है क्योंकि हम लोगों को महिमामय ज्योति का वस्त्र पहनाया जाएगा और जैसा हमारे प्रभु यीशु की ज्योति का वस्त्र था वैसा ही हमारा भी होगा। हम लूका 9 के 30 और 31 पद में पढ़ते हैं, और देखो मूसा और एलिया ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे, ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। प्रिय मित्र, दो मनुष्य पहाड़ पर दिखाई दिए, व्यवस्था का प्रतिनिधि मूसा और भविष्यवक्ताओं का प्रतिनिधि एलिया, वे दोनों उसके साथ बात कर रहे थे। वे किसके बारे में बात कर रहे थे? वे प्रभु यीशु की आने वाली मृत्यु के विषय में बात कर रहे थे। पौलुस कहता है कि जिस सुसमाचार का वह प्रचार कर रहा था उसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता दोनों ने दी है। सुसमाचार पुराने नियम के विपरीत बिल्कुल नहीं है। पौलुस इसे रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 21 पद में इस प्रकार रखता है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। व्यवस्था और भविष्यवक्ता प्रकट करते हैं कि केवल एक ही तरीके से परमेश्वर हमें बचा सकता है, वह है धार्मिकता जिसे हम विश्वास से प्राप्त करते हैं। पुराने नियम में इसे बलिदान लाने के द्वारा किया जाता था। बलिदान पत्ती ही मूसा के कार्य प्रणाली का केंद्र बिंदु थी। वह छोटा मेमना जिसका बलिदान चढ़ाया जाता था प्रभु यीशु का प्रतीक है, जो हमारे पापों के लिए मारा, और परमेश्वर के मेमना का जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने कहा कि वह जगत के पाप को उठा ले जाएगा। हम लुका 9 उसके 32 और 33 पद में आगे पढ़ते हैं, पत्रस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पत्रस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, सो हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह न जानता था कि क्या कह रहा है। प्रिय मित्र, यहाँ पर शिमोन पत्रस को कुछ कहना है और इस समय उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, परंतु वह बोलता है और चुप नहीं रहता है, और मैं अंदाज लगाता हूँ कि वह सोचता है वह कुछ महत्वपूर्ण बात कह रहा है। मगर लूका जोड़ता है, वह नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है। आज बहुत से लोग पत्रस के समान कुछ धार्मिक शब्दों को बोलते हैं, लेकिन वे नहीं जानते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। पत्रस 3 मंडपों को बनाने की सलाह देता है जो मूसा और एलिया को प्रभु यीशु के बराबर में रखता है। यद्यपि इस सूची में प्रभु यीशु को पहला स्थान देता है, परंतु चयन करने वाले बहुत से लोग मूसा और प्रभु यीशु को धर्म के संस्थापक की सूची में रखते हैं। आपको यह अजीब सा लग सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म के संस्थापक नहीं है। उसने कोई धर्म नहीं बनाया या स्थापित किया। वह जगत के पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए आया और मरा। वही उद्धार करता है, और इसीलिए हम लोग धर्म के द्वारा नहीं बचाए गए हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं। मुझे याद है कि डॉक्टर केराल ने बहुत बार कहा, जब मैं यीशु मसीह के पास आया मैंने अपना धर्म खो दिया। बहुत से लोगों को अपने इस धर्म को खोने और प्रभु यीशु को पाने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म हमें नहीं बचा सकता, सिर्फ प्रभु यीशु ही हमें बचा सकता है। हम लूका 9 अध्याय के 34 से 36 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए, और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे, और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से न की। प्रिय मित्र, आइए अब हम प्रभु यीशु के चमत्कार को देखें जो इकलौते पुत्र से दुष्ट आत्माओं को निकालने के बारे में है। हम लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 37 से 43 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है, और देख एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ता है और वह एकाएक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ता है कि वह मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ता है। और मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वे न निकाल सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा? अपने पुत्र को यहां ले आ। वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पलटकर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ से चकित हुए। यह संपूर्ण दृश्य आज का चित्र है। प्रभु यीशु अपनी महिमा में चला गया, उसके शिष्य उसके साथ हैं। हम लोग नीचे इस धरती में पहाड़ के नीचे हैं, जहां व्याकुलता और दुर्बलता है। संसार आज दुष्ट आत्माग्रस्त आदमी के समान व्यवहार कर रहा है और कलीसिया संसार की आवश्यकताओं के सामने असहाय है। जब प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ से बात की, तब उसने इस बालक के विषय में उनके अविश्वास के लिए उन्हें डांटा, और स्पष्ट है कि चेले और संदेहवादी इसमें शामिल थे। मेरे प्रिय मित्र, इस लड़के की स्थिति बहुत दयनीय थी। प्रभु यीशु उसके पिता की ओर घुमा और उसे विश्वास करने के लिए कहा। दूसरे समाचार के लेखक हमें बताते हैं कि उसके पिता ने विश्वास के लिए गिड़गिड़ाया। उसके चेले व्याकुल और अचंभित थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकाला था, लेकिन वे अब निकाल नहीं पाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह दृढ़ करता है कि इसकी गंभीरता के कारण यह दशा दूसरे से भिन्न है। प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा, बच्चे को चंगा किया और उसे उसके पिता के हाथ में सौंप दिया। फिर दुष्ट आत्मा को निकालने की प्रक्रिया ने इस मामले की गंभीरता को प्रकट किया। मेरे प्रिय मित्र, आइए अब हम प्रभु यीशु के यरूशलेम की ओर चलने के बारे में देखें। लड़के को दुष्ट आत्मा से छुड़ाने के बाद प्रभु यीशु और उनके शिष्यों ने यरूशलेम जाने का विचार किया। एक बार फिर हमारे प्रभु यीशु अपने आने वाले मृत्यु के विषय में कहते हैं। लूका 9 अध्याय के 44 और 45 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु जब सब लोग उन सब कामों से जो वह करता था अचंभा कर रहे थे, तो उसने अपने चेलों से कहा, ये बातें तुम्हारे कानों में पड़ी रहे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है। परंतु वे इस बात को न समझते थे, और यह उनसे छिपी रही कि वे उसे जानने न पाए, और वे इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। मृत्यु से भी जी उठने के संबंध में उन्होंने कुछ नहीं समझा। यहाँ वह उनके लिए अपनी मृत्यु के विषय में बोल रहा है, और आप सोच सकते हैं कि इसके विषय में जरूर उन्होंने पूछताछ की होगी। लूका 9 अध्याय के 46 पद में लिखा है, फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। मेरे मित्रों, रूपांतरण के बाद आप सोचते होंगे कि नम्र बने और उनके आज्ञाकारी बने, लेकिन इसके विपरीत वे महत्वाकांक्षी हो गए। वे मुकुट के बारे में सोच रहे थे और क्रूस का इनकार कर रहे थे। वे झूठी प्रशंसा चाह रहे थे, और उसी दिन से आज तक यह उनके शिष्यों का श्राप रहा है। यह कलीसिया के अनेक श्रापों में से एक है। गलातियों के पत्री 5 अध्याय उसके 26 पद में पौलुस ने अपनी पत्री में गलातियों के मसीहों को लिखा, हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। हम लूका 9 के 47 और 48 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। मेरे मित्रों, यह एक महान सिद्धांत है। मेरा यह मानना है कि सबसे बड़े संत कलीसिया में वे अज्ञात लोग हैं जो चुपचाप से और विश्वास योग्यता के साथ उसकी सेवा करते हैं। हम लूका 9 के 49 से 53 पद में पढ़ते हैं, तब यहोना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते देखा, और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो कोई तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया, और उसने अपने आगे दूत भेजे। वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। मेरे मित्र, सामरी लोगों के द्वारा तिरस्कार पर ध्यान दीजिए। दृष्टांत के कारण हम भले सामरी के बारे में सोचते हैं, परंतु वे लोग यहूदियों की तरह अच्छे लोग नहीं थे। यहूदी और सामरी दोनों ने प्रभु यीशु का तिरस्कार किया। हम लूका 9 के 54 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। यूहन्ना हमेशा एक सज्जन आदमी के रूप में सोचा जाता और जाना जाता था, लेकिन यहां उसके क्रोधी स्वभाव पर ध्यान दीजिए। हम लूका 9 के 55 और 56 पद में पढ़ते हैं, परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है, और वे किसी और गांव में चले गए। प्रभु यीशु किसी भी प्रकार के दलबंदी या गुटबंदी की आत्मा को डांटता है। मनुष्य का पुत्र नाश करने के लिए नहीं वरन बचाने के लिए आया है, यह कितनी मर्मवेदी डांट है। दूसरे अवसर पर लूका 19 अध्याय उसके 10 में उसने कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मित्रों, प्रभु यीशु के प्रथम आगमन को पूरी रीति से नहीं समझा गया, और यही कारण है कि आज बहुत से लोग भटकते हैं। मेरे मित्रों, आज प्रभु यीशु मसीह लोगों को नाश करने नहीं परंतु बचाने आए हैं। वे चाहते हैं कि हर एक इंसान, हर एक मनुष्य बचाया जाए और उसके राज्य में शामिल किया जाए, हर एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करे और अनंत जीवन में आ जाए। मेरे प्रिय मित्र, यदि आप चाहते हैं कि आप भी अनंत जीवन को प्राप्त करें, आप भी उद्धार को प्राप्त करें, तो प्रभु यीशु के पास आएं। वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको नाश होने से बचाना चाहते हैं। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो आपके पास आपको शांति देने के लिए तैयार हैं। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु लियो।